ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नाम श्रेष्ठं ननमपि शचीपुत्रं नेत्रस्वरूपं रूपं तस्यागजमरुपरिं मातरिं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रियतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणं Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktivinoda Thakur, unka divya darshan mein dekhte hain, to kaise Shri Narad Muni, sab बड़े बड़े देवताओं और सब विश्ववासियों को मताल पागल जैसे बनाते हैं हरि नाम की प्रेरणा से. इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है? हरि नाम प्रचार. तो हरि नाम करने से हम क्या मिलते हैं, उसका फल क्या होता है, इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बताए और चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और इनके 7000 शिष्यों को बताए कि कृष्ण मंत्र होते होवे संसामोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण. कृष्ण मंत्र जपने से हम संसार से मुक्त होते हैं और कृष्ण नाम जपने से हम कृष्ण चरण प्राप्ति करते हैं. तो वो एक उत्तर है. एक और उत्तर है या और सात उत्तर है. चैतो दर्पण मार्जनम भवमाहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरम दिव्य विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. इसमें इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन करने के सात मुख्य प्रभाव कहते हैं. चैतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है, अर्थात हृदय से सब गंदगी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भूल धारणा भौतिक आसक्तियां ये सब अनर्थ निकलते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन. चित्त शुद्धि होती है. भवमहादावाग्नि निर्वापनम, बहुत अलंकारिक भाषा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम से हम इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के दुख से मुक्त होते हैं. संसार दावाना, संसार दावाना का मतलब जंगल में आग जो होते हैं उसको दमन करना रुकना संभव नहीं है। एक उपाय है यदि आकाश से बादल से प्रचुर वृष्टि आएगी तो वो दावानल जंगल में महान आग का निर्वापन रुकना संभव हो। तो ये एक बहुत अलंकारिक रूपक है कि हम सब इस भौतिक संसार में आग में जैसे वो आग क्या है, तापत्राय, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। हम सदैव ये तीनों क्लेशों से पीड़ित रहते हैं। आध्यात्मिक अर्थात अपना शरीर जो वास्तविक वास्तव में हमारा शरीर नहीं है, परंतु माया का प्रभाव से हम इस शरीर से आत्मा परिचय करते हैं। तो उससे हम दर्द मिलते, अलग अलग प्रकार का तकलीफ मिलते और मन से भी हम पीड़ित होते हैं। तो ये इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्लेश आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। अधिभौतिक क्लेश का मतलब दूसरे प्राणी हमको तकलीफ देते, जैसे मच्छर एक है, कम से कम एक, वो मच्छर मुझसे अधिभौतिक क्लेश मिलते, मैं उसको भगा देता हूँ। और इस प्रकार मानव समाज में सभी लोग से हम प्रेम प्रीति नहीं करते हैं, बंधु भी होते और शत्रु भी होते। तो इस प्रकार शत्रुजन हमको तकलीफ देते, तो इस प्रकार अधिभौतिक क्लेश होते और अधिदैविक क्लेश प्राकृतिक क्लेश होगा। प्राकृतिक का मतलब जो देवगण देते हैं, अतिरिक्त वर्षा या अपर्याप्त वर्षा, शीतकाल में ज़्यादा शीत और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी होना, ये सब अधिदैविक क्लेश बोलते। तो इस प्रकार तापत्राय होते, तीन प्रकार, तीन श्रेणी के क्लेश और कितने सारे हैं, असंख्य असंख्य प्रकार के क्लेश है, तीन जाति में है, तापत्राय बोलते। तो इस प्रकार बाबा महादावाग्नि निर्वार्पणम इस अलंकारिक भाषा में चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का एक मुख्य प्रभाव का वर्णन करते हैं, जिसका पूरा वर्णन विशाल हो सकता। तो कैसे इस भौतिक जगत दुखमय है और कैसे वो हरि नाम हमें उस दुख से मुक्त करवा देते हैं। तो बाबा महादावाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये भी बहुत ही अलंकारिक कवित्वा है जिसका अर्थ है कि हरिनाम संकीर्तन से सब विश्ववासियों का श्रेय होते और विद्यावधु जीवनम, इस हरिनाम से आध्यात्मिक विद्या की अभिव्यक्ति होते हैं हृदय में, विद्यावधु जीवनम। मतलब विद्या जो भगवान की वधु है, पत्नी है सरस्वती। विद्या जो भगवान वो सरस्वती का प्राण है हरिनाम। जो हरिनाम करते हैं तो हरिनाम करने से और आध्यात्मिक विद्या उदित होती है वो भक्त का हृदय में। अर्थात हरिनाम करने से हम एक दो इधर उधर है बच्चा ठीक है, हमें नाम के बारे में चर्चा करना चाहिए, बच्चा के बारे में। हरे कृष्णा, बच्चा भी सुनते हैं, इसलिए हरि नाम जोर से करना चाहिए जिससे सब प्राणी सुनेंगे, सबका फायदा होता है। तो बाबा महादाबाद शेखर चंद्रिका वितरणम विद्या आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद अम्बुद्धि, अम्बुद्धि का मतलब सागर। सब लोग सागर समुद्र का दर्शन किया है, कोई है जो नहीं किया? आधुनिक युग में से कम टीवी या इंटरनेट में से सागर का दर्शन करते हैं। पूर्व यहाँ से कितना दूर है? ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर। कितना दूर है? 60 किलोमीटर है। लेकिन दो पीढ़ी के पहले वडोदरा निवासियों में बहुत कम थे जो सागर का दर्शन किए। ऐसा होता है तो खास, और जो जो अपने गांव में रहते थे तो नहीं का, शायद द्वारका यात्रा किया, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, और साथ साथ समुद्र का दर्शन होता। नहीं तो बहुत अभी तक दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में एक बार भी समुद्र का दर्शन नहीं किया। तो जो नहीं किया है तो कितना विशाल है समुद्र कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए एक कहावत है शास्त्र में जो श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बताया, उसको कूप मंडूक्य न्याय बोलते। वो क्या बोलते मंडूक्य हिंदी में? मेदक, मेदक जो कुआ में रहते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते तो कितना विशाल है समुद्र, क्योंकि उसकी पूरी अनुभूति उस छोटी सी कुआ वो ही है, वो उस उसका ज्ञान में वो तो पूरा विश्व। विश्व इस कुआ ही और कुछ ये सब कुछ है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को, भगवान हम नहीं देखते, इसलिए कैसे हम विश्वास कर सकते भगवान में? तो उसको खूब मांडू क्या नहीं बोलते। जैसे एक कुछ मेदक जो कुआ में रहते हैं तो एक साथ सब बड़े बड़े अध्यापक पीएचडी मेदक तो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुआ के ऊपर बहुत कुछ है, मनुष्य है, वडोदरा महानगरी है, ये सब कल्पना है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई नहीं देखा, हम सब बड़े बड़े पीएचडी मेदक है और हमारा पूरा मेदक का समाज में एक मेदक भी कभी भी ऐसा नहीं देखा, ये सब कल्पना है, कोई प्रमाण नहीं है, अगर वैसे हो तो हमको देखाओ, नहीं तो चुप रहो। कूपमांडू क्या नहीं? तो सागर कितना विशाल है, जो नहीं देखा कल्पना नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक आनंद सागर है, वो कितना बड़ा है, कौन सा बड़ा है, इंडियन ओशन या अटलांटिक ओशन? इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन बड़ा है ना, और अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन और भी बड़ा है। स्कूल में कुछ सीख लिया था, अभी तक कुछ याद है मन में। तो पैसिफिक ओशन से और बहुत 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 बड़ा है आनंदाम्बुदी, उसको क्या, उसका नाम क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, शिल प्रभुपाद तो अनुवाद किया है, कोई पढ़ चुके हैं उस भक्ति रस, कौन नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ चुके हैं, कौन कौन हाथ उठाओ। तो सबका जो खास जो दीक्षित भक्त है आप सबका वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, और यदि एक बार पढ़ चुके हैं तो फिर पढ़ो, कभी कभी पढ़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब भक्ति रस तत्व साधन साधना का विधान वो सब कुछ उस भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु कितना बड़ा है उसको मापना संभव नहीं है, अपर्याप्त है, असीम। और उस सिंधु से एक बूंद वो भी असीम है, तो असीम अपर्याप्त भक्ति रसामृत सिंधु शुद्ध भक्तों का हरि नाम संकीर्तन से और भी बड़ा हो जाता है, असीम होते हुए भी और भी बड़ा हो जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। और जो व्यक्ति इस हरिनाम से बताल हो, जो हरिनाम संकीर्तन करते प्रतिपदम हर कदम में पूर्ण अमृत भक्ति रसामृत का आस्वादन करते सर्वात्म स्नापनम। सर्वात्म स्नापनम का मतलब सभी व्यक्ति की पूरी तरह शुद्धिकरण होते हरिनाम संकीर्तन से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इस प्रश्न हरि नाम से क्या फायदा होता है, तो इस प्रकार अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर है नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमणा नाम है गान से हम समझ सकते हैं। एक उत्तर है कि हरि नाम करने से हम पागल हो जाते, तो पागल होने चाहिए, कृष्ण भक्ति में पागल होने चाहिए। तो इस भौतिक जगत में सब लोग पागल है, कैसे पागल है, नूनं प्रमथः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आप्रिणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असनापि क्लेशद आसदेह। श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं नूनम निश्चय ही प्रमथ, प्रमथ शब्द का मत मत मताव, इस शब्द का मतलब पागल, प्रमथा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण पूरी तरह पागल, निश्चय ही pagale aisa vyakti nunang pramata jo vikarma karte hai. Vikarma ka matlab pap karma jo vaidik vidhanon ki virudhe usko vikarma bolte pap karma. Jo log jo vikarma pap karma karte kisliye karte indriya priti indriya sukh prapt karne ke liye. So, indriya sukh prapt karne ke liye log jo vikarma karte sab pagal hai, Rishabhdev kehte hai. Aur kehte hai ki mere vichar mein aisa vikarm karna asadhu hai. Matlab thik nahi hai. Asadhu maane ya kyunki usse kya hota hai vikarm karne se ek aur asat deha prapt karna padega jisse klesh prapti hoti hai. To jo pap karma karte to uska phal hoga ki usko dusra sharira dharan karna padega aur uska phal kya hoga tapatrai adhyatmik, adhibhautik, adhidaivik, klesh, bhogna, avishya. Jo punya karma karte hai, usko bhi naya sharira dharan karna padega. Parantu visheshkar, jo paap karma karne wale hai, to uska paap karna ka phal bahut kharab ho jayega. To isliye Rishabhdev kehte hai, ki log jo vikarma pap karma karte pagal hai uske alawa sab log jo bhagwan ko bhulte rehte hai is bhautik sansar mein sab pagal hai ahankare matto haya nitai pada pasharya asatyare satya karimani. Jo log Nityananda Prabhu ke charan bhulte rehte hain ahankar se matta hote hain. Matta ka matlab pagal. Ahankare matta hai. Yadi hum swikar karte hain ki main Bhagwan Krishna ka das hoon to wo hamara vastavik swaroop gyan hai. Jive swaroop hoi Krishna nitya das. Main Krishna ka nitya das hun, Sanatan das, Nityananda ka Sanatan das. Nityananda Balaram ka swaroop hai, aur Nityananda Krishna ka ek naam bhi hai. Iska arth samajhna saral hai, jo sadaiva anandit rehte hai, wo Krishna Bhagavan hai, aur hum bhi sadaiva आनंदित रह सकते यदि हम आनंदमय मार्ग भक्ति मार्ग पूरी तरह पालन करेंगे. तो जो लोग अपना स्वरूप कि मैं कृष्ण का दास हूँ भूलते रहते अहंकार से जीवन व्यतीत करते. अहंकार मतलब मैं करता हूँ सब कुछ जो मैं करता हूँ ईश्वर मैं हूँ ये सब लोग मेरे कुटुम्ब और दोस्त ये मेरे समाज है ये मेरा देश है इंडिया मेरा देश है. तो इस प्रकार सोचना अहंकार ये सब पागलपन है क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ मैं इस देश के नहीं हूँ. हम एक अभी एक शरीर धारण करते हैं इसके पहले कितना असंख्य शरीर धारण किया है और इसके बाद भी और बहुत बहुत पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम. तो इस जीवन क्षण के कमल दल जल जीवन ठल मल, हम अभी एक शरीर में है और एक क्षण के बाद इस शरीर का ना पूरा नाश हो सकते, मरण हो सकते, इसलिए उसको क्षणिक बोलते। और पूरी जिंदगी 100 साल तक इतना लंबा अगर हो तो फिर भी क्षणिक है। तो महाकाल में 100 साल एक क्षण है। तो इस जीवन तो क्षणिक होते हुए भी हम पूरी गंभीरत्व से उसको व्यतीत करते हैं और हमारी सभी आशा इस शरीर का जीवन के साथ हम संयुक्त करते हैं। तो मैं इस शरीर हूँ, इसलिए इस शरीर के लिए मुझे घर बनाना है, इस शरीर का पोषण करने के लिए मुझे भोजन लेना है, व्यायाम करना है, पैसा कमाना। और इस प्रकार देहात्म बुद्धि होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण की प्रथम शिक्षा है देह और देही में अंतर क्या है। देही शब्द, देही देह, जैसे गृही गृह, सब जानते हैं गृही शब्द। गृही का मतलब जो एक गृह में रहते हैं। तो देही शब्द का अर्थ क्या है, जो देह में रहते हैं, अर्थात आत्मा जो इस देह एक देह के साथ आत्मा परिचय करते हैं। तो वास्तव में गृही और गृह अलग है। गृही तो एक गृह में रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से वो गृह का पूरा नाश हो जाते हैं या यदि एक व्यक्ति तो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो एक गृह का त्याग करके दूसरे गृह में प्रवेश करते हैं। तो पहले एक गृह में था, बाद में दूसरे गृह में, तो फिर भी गृही है, गृह में रहते हैं। तो इस प्रकार देही, देही तो देह में रहते हैं, अलग अलग देह में, परंतु गृह और गृही जैसे अलग है, देह और देही अलग है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हमको शिक्षा प्रदान करते, प्राथमिक शिक्षा, प्रथम शिक्षा कि देह और देही भिन्न है। इसलिए कि मैं इस देह नहीं हूँ इसको समझना चाहिए। जैसे कार, कार का ड्राइवर है, तो कार और बाहर से वो कार और ड्राइवर एक जैसे ही दिखते, लेकिन कभी भी वो ड्राइवर तो कार को रुका सकते और कार के बाहर आ सकते। कार और ड्राइवर अलग है। कार एक मशीन है, वो ड्राइवर चलाते। तो इस प्रकार देह एक मशीन जैसे है। ईश्वर सार्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयं सार्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ईश्वर सब जीव के हृदय में है और सब जीव इस भौतिक संसार में, सब जीव एक जीव तो एक एक विशेष यंत्र जैसे शरीर चलाने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण सब जीव के साथ है। तो इस प्रकार यदि हम देही और देह एक ही है समझते, तो वो क्या पागलपन है। तो इस पागलपन से हमको बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता कहते हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण का अंतिम और उत्तम उपदेश है, सर्वधमान परित्यजाम शरण व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सभी प्रकार के धर्म, भौतिक काल्पनिक धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरण में ही पूरा आश्रय ले लो, मैं तुमको तुम्हारे सब पूर्वकृत पाप कर्म का फल से बचूंगा, सोचो मत। तो ये श्री कृष्ण का उपदेश है। परंतु कलयुग में कोई तैयार नहीं है,
हरे कृष्ण,
कोई तैयार नहीं है इस उपदेश को हम करना। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते और सब पागल व्यक्ति को बोलते और भी पागल हो जाओ। अभी सब पागल है देहात्म बुद्धि से, देह और देही एक है इस भूल धारणा से। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है पागल हो जाओ शराब पीने से। शराब पीना मना है नहीं, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश इस शराब माधुरी पूरी आशा बपोशी, माधुरी पूरी एक आशा अर्थात शराब है नाम, सुमधुर हरि नाम पियो, यही चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। भक्तिविनोद ठाकुर दिव्य दृष्टि से देखते हैं किस प्रकार नारद मुनि पूरे विश्व के लोग मताल हो गया है, पागल हो गया है हरि नाम का रसामृत पीने से। श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग के नारद मुनि है, नारद मुनि के प्रतिनिधि है। उन्होंने सबसे अयोग्य लोग को हरिनाम पिलाए। तो श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन इस्कॉन का आश्रम में थे और उनके सभी शिष्य, लगभग सभी शिष्य तो ऐसे के वो उनकी रीति थी कि प्रतिदिन मंगल आरती, श्रीमद् भागवत पाठ, ब्रेकफास्ट प्रसाद के बाद सब बहा जाते थे हरिनाम संकीर्तन लंदन महानगरी में फैलाने के लिए, हरि कीर्तन करने के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद इनके घर आश्रम में दिन का समय जिसमें लगभग सभी बाहर रहते थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद अचानक हंसने लगे और इनके साथ वो एक भक्त जो थे श्रील प्रभुपाद से पूछे थे, प्रभुपाद आप क्यों अचानक आप हंसने लगते? प्रभुपाद बोले कि मैं देखता हूँ तो नारद मुनि वो आपका संकीर्तन पार्टी में आया है और नारद मुनि हंसते हैं, बहुत प्रसन्न है, देखते ही तो कैसे ये सब म्लेच्छ लोग हरि नाम ग्रहण किया है। और उस मंदिर में राधा लंदनेश्वर मंदिर में श्रील प्रभुपाद बोले कि श्री श्री राधा कृष्ण, जिनके नाम श्रील प्रभुपाद राधा लंदनेश्वर ये नाम रखा, श्रील प्रभुपाद बोले कि सिंहासन मतलब राधा कृष्ण के सिंहासन के पास एक छोटा सा सिंहासन रखना चाहिए ब्रह्मा जी के लिए, और एक दूसरा नारद मुनि के लिए, क्योंकि ब्रह्मा और नारद मुनि सदैव यहाँ रहते हैं राधा लंदनीश्वर के पास। एक बार न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, उस समय इस्कॉन बहुत छोटा संघ था, तो दीक्षित भक्त संख्या तो 15 के ज़्यादा नहीं था, एकदम प्राथमिक स्तर पर। और भक्तों एक जो है जनता कार्यक्रम आयोजन किया, एक बड़ा हॉल किराया से लिया एक दिन के लिए, एक और उसमें 400-500 सीट था, लेकिन 4-5 इतने ज़्यादा लोग नहीं आया। श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद आए सभी शिष्यों के साथ और पूरा कार्यक्रम किया है, कीर्तन, उसके बाद लंबा प्रवचन, और पूरा हॉल खाली था। और बाद में ही वो भक्तों प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद बहुत खेद है, तो हम प्रयास किए लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। कम लोग प्रभुपाद, तुम नहीं देखा तो सब देवगण उपस्थित थे, नारद मुनि भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, प्रभुपाद का दिव्य दर्शन, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे। भक्तिनाथ ठाकुर नारद मुनि का प्रेम संकीर्तन देखते हैं, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक ही है। हम नहीं देखते, हम सोचते हैं कि सब कुछ जो हम देखते हैं वडोदरा महानगरी यही सच है, लेकिन दिव्य दृष्टि से हमें देखना चाहिए कैसे सब देवगण भगवान की स्तुति करते हैं, यंग ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय। हमारा लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन में शामिल होना, तो इसलिए हमें नारद मुनि की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरा योग्य होना चाहिए। योग्यता कैसे प्राप्त करना है? हरि नाम करने से। और योग्यता क्या है? विषय क्षारय शय रसय मजय मुखे बोलो हरि हरि। विषय अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा छोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार हमें हरि कीर्तन करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं छोड़ कठिन है, हम कठिन जैसे लगते, परंतु हरि नाम की कृपा से संभव है, क्योंकि चैतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि होती है हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी का प्रश्न हो, उत्तर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चांद हरे कृष्णा अन्वे हापी, हरे कृष्णा बोलो सुखी रहो। और श्रील प्रभुपाद का आदेश है और गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए। इस कृष्ण भवन अमृत संघ में का एक सख्त नियम है, दुखी होना मना है, सुखी होने चाहिए। कैसे? हरि नाम आनंद से। हरे कृष्ण। गोपीनाथ आचार्य का सवाल है, गोपीनाथ आचार्य तो महान पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य की भूल धारणा का खंडन किया है, नहीं तो बड़ा ज्ञानी है गोपीनाथ आचार्य।
रामानंद नहीं एक्चुअली क्या है रामानुज का संप्रदाय में तो दूसरे दिन पर रामानुजाचार्य का आविर्भाव पालन करते हैं। अलग सिस्टम से गणना है। हम जो गौड़िया वैष्णव ये हमारा गौड़िया रीति है तिथि के अनुसार और श्री वैष्णव संप्रदाय में वो सब मंगल दिन तो नक्षत्र के अनुसार गणित है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय में वो मई महीने में वो दिन कौन सा तारीख पहला मई वो रामानुज का 1000 साल हो गया है उनका आविर्भाव महोत्सव होगा और इसलिए मैं प्लानिंग करता हूँ श्री परम्पदा रामानुजाचार्य का आविर्भाव स्थान में मैं भक्तों के साथ वहाँ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। पंडाल प्रोग्राम के लिए हम आयोजन करते हैं। रामानुजाचार्य महान आचार्य वैष्णव आचार्य की संस्तुति करने के लिए। हाँ वे कहते हैं अनंत शेष के अवतार है। ऐसा ही वर्णन है प्रपदमृत रामानुज की जीवनी है। तो कैसे रामानुज अनंत शेष के अवतार है, हम भी बोलते हैं प्रभुपाद भगवान का अवतार है। शक्त्यावेश अवतार आचार्यं मां कृष्ण भगवान कहते हैं आचार्यं मां विजानीयान् आचार्य मुझसे अभिन्न है। यद्यपि अमा गुरु चैतन्य रदास तथापि जनये ताहा चैतन्य प्रकाश चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु चैतन्य भगवान के सेवक है तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश भी है भिन्न और अभिन्न। हरे कृष्ण।